गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
पंथ चलत ठोकर लगी राम नाम कै दीन, दास गरीब कसर नहीं सीख ली परवीन। आडा पर्दा ला के अब सामने खड़ा कर दिया रामानंद जी के, और रामानंद जी ने सामने पर्दा लगा रखा था कि देख लेना भैया, मैं तो उनके दर्शन भी नहीं करता नीच जात वालों के। बीच में पर्दा लाके और दूसरी तरफ कबीर साहब को खड़ा कर दिया, स्वयं कुटिया के अंदर बैठकर प्रश्न उत्तर करता है ये सिद्ध करने के लिए कि मैंने इसको नाम नहीं दिया, क्योंकि ब्राह्मण लोग खाल खा लेते उसकी कि तू छोटी जाति वालों को कैसे नाम दे रहा है। केवल ब्राह्मणों को ही वो उपदेश दिया करता था। तो क्या बताते, आडा पर्दा लाके रामानंद भूजंत, दास गरीब कुलंग छवि अदर धाक कुदंत। अदर धाक कुदंत जैसे मर्ग कूद जाकर अन्यो का झोपड़ी में कूद कूद पड़ा अन्यो का मन। अब देखो कैसी कैसी बातें होती हैं भगवान के साथ, कैसी बकवाद की उस अनजान व्यक्ति ने, और बाद में फिर कितना पछताया वो रामानंद सच्चाई को समझ के। आडा पड़दा ला कर रामानंद भूजंत, दास गरीब कुलंग छवि वो अधर ढाक को दंत। कौन जात कुल पंथ है और कौन तुम्हारा नाम, दास गरीब अधीन गति फिर बोलत है बलिजाम। रामानंद कहता है कौन तुम्हारा, कौन तेरी जात है और कौन कुल पंथ, और कौन सा तेरा पंथ है, कौन से परमेश्वर का तू मार्ग बताता है जानता है, कौन से भगवान की भक्ति करता है, तुम्हारा नाम क्या है। फिर परमात्मा जैसे गुरु और शिष्य के नाते से बोलते हैं, अधीन होकर के परमात्मा अपने गुरु, क्योंकि उन्होंने गुरु धारण करना था, इसलिए करना था कि आने वाले समय में काल का दाव ना लग जाए, कोई ये ना कह दे कि कबीर साहब ने कौन सा गुरु बना रखा था, इसलिए गुरु की कोई आवश्यकता नहीं होती। इस कारण से परमात्मा ने यह मर्यादा बनाए रखने के लिए रामानंद जी को गुरु बनाया और शिष्य बनकर उसका उद्धार किया। तो कैसे अधीन, जैसे गुरु शिष्य का नाता होता है उसी प्रकार बोलते हैं, जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़े मेरा नाम निरंजन कंत। यदि स्वामी जी मेरी जात पूछ रहे हो तो मैं जगत गुरु हूं, जात मेरी जगत गुरु है, और परमेश्वर का मेरा पंथ पूछते हो, मैं किस भगवान की भक्ति करता हूं, वो परमेश्वर मेरा पंथ है, पूर्ण परमात्मा की साधना करता हूं, और मेरा नाम पूछते हो तो मैं सारी सृष्टि का रचनहार माया रहित परमात्मा वो मैं ही हूं। अब रामानंद जी कहते हैं, रे बालक सुन दुर्बुद्धि तेरा घटमट तन आकारे, दास गरीब दर्द लग्या जब हो बोले सृजनहारे। रामानंद को बड़ा दुख हुआ कि एक जुलाहे का बालक अपने आप को भगवान कहता है कि मैं मालिक हूं, सारी सृष्टि का रचनहार हूं और जगत गुरु हूं, सबको ज्ञान देने वाला हूं। कहते हैं क्या क्या उलाने दिए, कैसी कैसी अभद्र गालियां दी। रे बालक सुन दुर्बुद्धि घटमट तन आकार, दास गरीब दर्द लग्या हो बोले सृजनहार। अब परमात्मा ने कहा ना कि जिस निरंजन को तुम निराकार मानते हो, उस वो ज्योति निरंजन, और मैं उसका भी उससे भी ऊपर का परमात्मा हूं। तो ये संत बेशक किसी भी इष्ट को भगवान मानकर पूजा करते हैं, विष्णु को, शिव जी को, और फिर भी इनसे पूछे ना भगवान कैसा होता है बताइए, निराकार हो तो। अब यह कह रहा है रामानंद जी, अरे बालक सुन दुर्बुद्धि तेरा घटमट तन आकार, तू तो दिखाई देता है, तू भगवान कैसे हो गया, तू तो साकार खड़ा है। और उधर विष्णु की मूर्ति बना रहे, मूर्ति पूज, और विष्णु को भगवान माने, और फिर विष्णु के भगवान तो निराकार है। ऐसा ज्ञान है इन ऋषि और महर्षियों का, पुण्यात्माओं। रे बालक सुन दुर्बुद्धि तेरा घटमट तन आकार, दास गरीब दर्द लग्या हो बोले सृजनहार। भगवान ने अपने आप को नो कह दिया ना, मैं भगवान हूं। कहते रामानंद का बड़ा दुख होया कि तू अपने आप को भगवान कहता है, भगवान कहता है क्या, करके क्यों लाने देता है कि तू मोमन का पालवा, तेरा जुलाहे के घर बास, और दास गरीब अज्ञान गति एता दृढ़ विश्वास। नौका आकर ना तू फलाने का तो टुकड़ों पर पड़न लग रहा, जुलाए के टुकड़ों पर पलने वाले तो अपने आप को भगवान कहता है। मान बड़ाई छाड़ कर बोलो बालक बहन, दास गरीब अदमुखी एता तुम गठफेन। रामान जी ने बोले ढंग तो बात करे, ये बकवाद ना करे, मान बड़ाई छोड़ दे, तू अपने आप को भगवान कह रहा है। फिर क्या बोलते हैं परमात्मा, प्यार से, आधीनी से, मैं के बदन खुलास कर सुन स्वामी परवीन, दास गरीब मनी मरे मैं आजज आधीन। मेरा अभिमान नहीं है स्वामी जी, मेरे अंदर कोई मान बड़ाई नहीं है, मैं आपका बच्चा हूं, आपके आधीन हूं, और लेकिन मैं हूं वही जो कह रहा हूं, मैं हूं वही भगवान जिसको जो मैं अपने आप को बता रहा हूं। क्या कहते हैं, मैं अवगत गत से परे चार वेद से दूर, दास गरीब दसों दिशा मैं सकल सिंध भरपूर, मेरी शक्ति से सब संसार चल रहा है, और मैं अवगत गत से भी परे और चार वेद से दूर। क्या बताते हैं, वेद हमारा वेद है, मैं मिलूं वेद से नाही, इन वेदन से नाही, चार वेद जो है ना ये मेरा ही वेद बता रहे हैं, लेकिन इनमें वर्णित विधि से मैं नहीं मिल सकता, मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ज्ञान तो वेदों में पूर्ण परमात्मा का भी है खूब डिटेल से, लेकिन उसके भक्ति की विधि केवल ब्रह्म तक की है, पूर्ण ब्रह्म की नहीं है। तो इसलिए बता रहे हैं, वेद हमारा वेद मेरा वेद हमारा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नाही। जिस वेद से, जिस ज्ञान से मैं मिलूं, उस तत्व दर्श तत्व ज्ञान से, उस सवसम वेद से मैं मिलूं, वो इन चारों वेदों में नहीं है। तो यहां क्या बताते हैं, अवगत गत से मैं परे और चार वेद से दूरे, दास गरीब दसों दिशा ये सकल सिंध भरपूरे, सकल सिंध भरपूर हूं खालिक हमारा नाम, दास गरीब अजात हूं तै जो कहा बलि जाऊं। जात पात मेरे नहीं, मारी बस्ती है बिन थाम। दास गरीब अनिन गति, तन मेरा बिन चाम। क्या बताते हैं के जात पात मेरे नहीं, सकल सिंध भरपूर हूं और खालिक मेरा नाम। मैं सारी खालिक माने सृष्टि का पति, खलक सृष्टि और खालिक उसका मालिक। मैं सारी सृष्टि का मालिक हूं और अजात हूं, मेरे कोई जात नहीं है, फिर भी आप मेरे गुरुजी हो और मुझे जो भी कह रहे हो वो स्वीकारिए, सिरोधारिए। क्या बताते हैं भगवान, सब संगी बिछड़ो नहीं, आज अंत बोझाही। दास गरीब सकल बसों में, बाहर भीतर माही। परमात्मा बोले, ए स्वामी सृष्टा में, ओए होए सारी सृष्टि का रचनहार सृष्टा, ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमरे तीर, और दास गरीब में अधर बसूं, सतलोक में रहता हूं अवगत सत कबीर। गीता जी के अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 में कहा है, गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ये काल कह रहा है कि मैं मुझ अव्यक्त को, मैं भी अव्यक्त हूं, मेरी गति को ये ब्रह्मा विष्णु महेश और ये 21 ब्रह्मंड के लोग नहीं जानते। ये मुझे व्यक्त कृष्ण की तरह मानते हैं, ये कृष्ण मान रहे हैं मुझ, मैं अव्यक्त हूं, मैं कभी किसी के सामने अपने वास्तविक रूप में प्रकट नहीं होता, मैं अव्यक्त हूं। 8वें अध्याय के 18वें श्लोक में लिखा है कि पूर्ण सभी सृष्टि जब 21 ब्रह्मांड काल के नष्ट हो जाते हैं, सभी प्राणी उस अव्यक्त के लोक में 1000 युग तक रहते हैं। 21 ब्रह्मांड में प्रलय हो जाती है और फिर 1000 युग की जब रात्रि पूरी हो जाती है तो पुनः उसी व्यक्त से, अव्यक्त से वो प्रकट होते हैं, और फिर उस अव्यक्त से भी और जो दूसरा अव्यक्त भाव है वो सभी प्राणियों के नष्ट होने पर भी कभी भी नष्ट नहीं होता, विनाश को प्राप्त नहीं होता, वो वास्तव में अविनाशी है। तो कहते हैं मैं वो अवगत गत से परे, ए सृष्टा स्वामी में, ए स्वामी सृष्टा में, सृष्टि हमरे तीर। दास गरीब अधर बसूं, अवगत सत्य कबीर। वो तीसरे नंबर का जो अव्यक्त है जिसकी गति को कोई नहीं जानता, वो मैं हूं और मेरा नाम सत्य कबीर है। अंत कोट पौमी धरनी आकाश में व्यापक सब ठोड़े। अब क्या बता रहे हैं कि मैं सर्वव्यापक हूं, साकार खड़े हैं और कहते मैं सर्वव्यापक हूं। सर्वव्यापक का अर्थ होता वासुदेव, जिसकी प्रभुता पूरे संसार पूरे ब्रह्मांडों पर है वो वासुदेव होता है। तो क्या बताते हैं, धरनी पौमी धरनी आकाश में व्यापक सब ठोरे। दास गरीब नहीं दूसरा, हम समतुल नहीं ओरे। सुन रामानंद राम हम और हमसे हम बावन नरसिंह। दास गरीब कली कली ही, हम ही से तेरे कृष्ण अभंग। ये मेरी शक्ति से तेरे कृष्ण आदि चल रहे हैं। हम ही से इंद्र कुबेर हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। दास गरीब धर्म धजा, धरणी रसातल शेष। सुन स्वामी सत भाख हूं झूठ ना मेरा रिंच, इतनी भी झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं। और दास गरीब मेरे रूप बिना और सकल परपंच, मेरे बिना ये सब परपंच है और कोई सब कोई भगवान नहीं है जो तुम्हें मोक्ष कर सके और तुम्हें पूर्ण सुख दे सके। मैं रोवत हूं सृष्टि को ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीब दास विजोग इस विजोग को समझ न सकता कोई। मैं ही बुझू मैं ही कहूं और हमसे हुआ वियोग, दास गरीब गलतान हम शब्द हमारा भोग। अब क्या बताते हैं कि रामानंद जी कह रहे थे कि तर्क तलु से बोलते रामानंद सुरज्ञान दास गरीब कुजात है आखिर नीच निदान, कि अपने आप को भगवान कह रहा है तू छोटी जात का है, तेरे माँ बाप का भी बेरा कोडा कुजात और तू भगवान कहता अपने आप को। अब परमात्मा प्रसन्न होकर कहते हैं ए स्वामी सृष्टा में और सुन रामानंद राम में, हम ही बावन हमसे बावन नरसिंह और दास गरीब कली कली हम ही से तेरे कृष्ण अभंग। अब सच्चाई कहना इतना दुखदाई हो गया कि भगवान के रामानंद जी भी नाराज हो गए। क्या बताते हैं चार युगन में हम फिरे हैं, कभी आऊं कभी जाऊं, गरीब दास सत गुरु भेद से लखो हमारी ठाव। तत्वदर्शी संत से हमारा वो वास्तविक स्थान का पता करो। और चारों युगों में हम पुकारे कुक कहा हम हेल रे, हीरे बाणक मोती बरसे ये जग जुगता ढेल रे। है चारों युगों में हम आकर के आवाज लगाते हैं और हम हीरे मोती माणक ये मुक्ति रूपी वर्षा करते हैं तत्व ज्ञान की, और ये जग चुगता डले ये डले ढो रहा है इन नीचे के भगवानों की साधना करके। गोता लाऊं स्वर्ग में और फिर बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं हीरे मोती लाले। गोता मारू स्वर्ग में जा बैठू पाताल और गरीब दास ढूंढता फिरूं मैं अपने हीरे मोती लाल, अपने पुण्यात्माओं को ढूंढता फिरता हूं संसार में, कभी पाताल में पहुंच जाता हूं कभी स्वर्ग में जाता हूं कभी पृथ्वी पर आता हूं, इनको सच्चा ज्ञान समझाता हूं। अब रामानंद जी ने सोचा बात तो इसी बड़ी बड़ी कह रहा है, तो रामानंद जी ने कहा कि बेटा, कहने लगा बच्चा तू अभी बाहर बैठ, तू तो घनी बड़ी बड़ी बातें बना रहा है, तेरे साथ तो कोई लंबी कहानी करनी पड़ेगी, हैं? इससे पहले मेरी थोड़ी सी पूजा रहती है, मैं अपनी पूजा कर लेता हूं। आगे पर्दा लगा हुआ है, झोंपड़ी के अंदर स्वामी जी बैठे हैं कुटिया में, रामानंद जी कबीर साहब बाहर खड़े हैं। रामानंद जी प्रतिदिन कैसी क्रिया करते थे, वेदों के ज्ञाता कहलाते थे और पूजा वाय करा करते, कैसे? जैसे उन्होंने मूर्ति पूजा, वैसे तो मूर्ति पूजा नहीं करते थे लेकिन मानसिक करते थे। इनमें भी ये मानते हैं कि जो मानसिक पूजा की जाए वो अच्छी होती है। भगवान विष्णु की मूर्ति कल्पना से बनाते थे, जैसे शेख चिल्ली की तरह अपनी कल्पना करते थे, करते हैं जैसे वो कैसा करा करते प्रतिदिन, जैसे खुद मटका लाए हो जल का गंगा से जाकर नंगे पैरों, और फिर वो मटका लाए भगवान विष्णु जी के एक मूर्ति कल्पना से बनाते थे मन में, और उसके सारे कपड़े उतारते भगवान को स्नान कराते और फिर पुराने कपड़े एक तरफ रख देते नए कपड़े पहनाते, तिलक लगाते हैं और मुकुट रखते और गले में वो कंठी माला, एक मोटे तुलसी के मणके की एक ही मणके की वो कंठी कहते हैं उसको, माला बोलते हैं। और वो भगवान के गले में वो कंठी और बैजंती वाला ये डाला करते थे। तो वो माला अब क्या हुआ, उस दिन परमात्मा की रजा थी, स्वामी रामानंद जी ने पहले मुकुट रख दिया और गले में माला डालना भूल गए। अब कर्मकांड के अंदर ये नियम है कि उस दिन मुकुट रखने के बाद अगले दिन तक मुकुट उतारा नहीं जाता, मुकुट उतार दे तो पूजा खंडित और एक भी आभूषण रह गया तो पूजा खंडित। स्वामी जी माला डालनी भूल गए। अब उसने सोचा कि कैसे डालो, आज तो बड़ी बात बिगड़ी। मनोमन में सोच रहा है, हे भगवान या क्या बड़ी, इतने जीवन में आज तक ऐसी गलती नहीं लगी थी, आज कैसे हुआ, मेरा कौन सा पाप कर्म आगे अड़ गया। तो उन्होंने सोचा कि इस मुकुट के ऊपर का माला डाल देता हूं। वो कल्पना जैसे सपना होया करे, ऐसे कल्पना से माला डालने की चेष्टा की तो वो मुकुट ज्यादा चौड़ा था, वह माला नहीं डली। रामानंद जी बड़ा दुखी हुए, क्योंकि पुण्यात्मा जो होती है वो साधना में थोड़ा सा भंग गिरने से ही काफी दुखी हो जाती है। बड़े चिंतित थे, आकाश ये के बनी भगवान, कौन सी गलती बनी मेरे से। उसी समय परमात्मा बाहर खड़े कबीर जी बोले कि स्वामी गुंडी खोल के और माला फिर माला गलदार। स्वामी जी ऐसा करो, इस माला की गांठ खोल लो गुंडी और फिर ऐसे गले में गडाल के और गांठ ला दो, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा आपको। ओए होए होए, अब ना कोई मूर्ति सामने थी ना कोई माला थी, और जब देखा कि बाहर खड़े कबीर परमेश्वर ने मेरे मन की बात बता दी, अरे यो तो भगवान खड़ा है, सचमुच ये परमात्मा है। उसी समय क्या कहते हैं इसको, ब्राह्मण कहते हैं, इसका नाम पंडित है, ब्राह्मण से जो ब्रह्म पहचाने और बकत पड़े सौदा करे कोठे डारे ज्ञान, लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रही है, ये मन साधो दीजिए तो गोविंद पाइये। लोक लाज मर्याद तरन, जगत की तरण जो तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गत पावे। अब रामानंद जी बाल ब्रह्मचारी थे, 104 साल की उम्र वाली थी, परमात्मा के पाने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। इसका नाम ब्राह्मण होता है, उसने समाज नहीं देखा, जात नहीं देखी, और ये भी नहीं देखा या दुनिया क्या कहेगी, तू ब्राह्मण होकर एक जुलाहे के लड़के को प्यार कर रहा है, सीने से लगा रहा है। रामानंद जी को भगवान दिखाई दिया, वो आड्डा पड़दा दूर बगा लीना कंठ लगा, गरीब दास गुजरी बहुत जो बदन बदन मिलाया। ओए होए, कहते एक तरफ तो पूरा ब्राह्मण समाज 2 मिनट तक पहले गाली दे रहा था कि हम तू कुजात है, तेरे माँ का बेरा ना बाप का बेरा है, और तू छोटी जाति के, ये बोला ऊंचा होकर जब देखा सचमुच भगवान है तो उसने नहीं देखा कि मैं कौन हूं। उसने अपने आप को एक जीव समझा और सामने भगवान नजर आया, तो उस बच्चे को, उस दुलाहे के लड़के को सीने से लगा दिया। पुण्यात्माओं, इनका नाम भगत होता है, वो आगा पीछा नहीं देखा करते। फिर जिसके लिए पापड़ बेल रहे सामने खड़ा, फिर हम बकवाद करें, फिर हम किसे भगत हैं और क्या भक्ति कर रहे हैं। कहते हैं रामानंद जी के मन पर गुजरी था बहुत बुंडी, जब उस दुलाहे के धानक के लड़के को सीने से लगाया, लेकिन भाई लाना जरूरी हो गया क्योंकि भगवान खड़ा दिखे। और परमात्मा ने तो वहां ना काफी कुछ रहस्य उद्घाटन कराना था, उस रामानंद जी का कति भ्रम जड़त का निकालना था, इसलिए उसकी बुद्धि में फिर फर्क कर दिया। स्वामी गुंडी खोल कर फिर माला गलडारे, गरीब दास इस भजन को जानत है करतारे। ये तो भगवान जान सकता है, फिर किसकी गांठ खोल था, ना कोई मूर्ति थी, फेंक दिया वो पर्दा भी जो बीच में ला रखा था और भगवान को सीने से लगाया। डोडी पर्दा दूर कर लिया कंठ लगाए, गरीब दास गुजरी बहुत जब बदन बदन मिलाए। फिर क्या कहते हैं रामानंद जी, ए भगवान आपको कैसे पहचाने हम तुच्छ बुद्धि जीव, कि आप सचमुच भगवान हो और किस जाति में जन्म, किस जाति में आप पले हो, किस जाति में रह रहे हो और किस वेशभूषा में खड़े। मन की पूजा तुम लखी ये मुकुटमाल परवेसे, गरीब दास गति को लखे तेरा कौन वरण कौन वेश, तेरी गति को कौन समझ सके, तेरी महिमा तेरी लीला ने क्यों कर जाने हम तुच्छ बुद्धि जीव, आप कौन वर्ण में यानी शूद्र वर्ण में और किस वेशभूषा में, छोटी सी टोपी पहन रहे हैं, 5 साल के बालक अद्वैती कुर्ता बांधे खड़े, किस वेशभूषा में और आपको कैसे भगवान माने, तेरी लीला को कैसे समझे कि तू भगवान है। फिर क्या बताते हैं, या तो दीक्षा तुम दी मान ली मन मोरे, गरीब दास को मल पुरुष और हमरा बदन कठोरे, अब रामानंद जी ने फिर भी मन में शंका की, परमात्मा ने पैदा की, कहने लगे बच्चा या तो बात मेरा समझ में आ गई, आप मेरी फड़क निकालने के लिए आए थे, ये जो दीक्षा तुम दी मान ली मनमोर, या मेरे ती जो शिक्षा दी ना, छोटी जाति बड़ी जाति और भगत होकर मैं ऐसी नखरे कर रहा था भगवान, या तो मेरी समझ में आ गई और आपका शरीर इतना कोमल है जैसे रूई हुआ करे और मेरा तो पत्थर जैसा शरीर है आपके कोमल शरीर को देखकर, क्योंकि परमात्मा का तेज पुंज का शरीर है, ऐसनाविरम अकायम, ये 5 तत्व का शरीर नहीं, शूद्र शुक्रम अकायम, मात पिता के संयोग से बनी उस परमात्मा की काया नहीं है, वो दाढ़ी के जोड़ जुगाड़ से बनी हुई शरीर नहीं है, प्रभु का 5 तत्व का शरीर है। तो रामानंद जी कह रहे हैं कि जब वो शरीर कंठ गले से लगाए तो ऐसा शरीर जानो रूही हुआ करे, ऐसे नो कहे, या तो तुम शिक्षा दी मान ली मनमोर और गरीब दास तुम कोमल भगवान कोमल पुरुष और मेरा बदन कठोर। फिर कहने लगे स्वामी जी, कहने लगे हे बच्चा आपने झूठ क्यों बोला। परमात्मा बोले क्या झूठ बोला स्वामी जी, क्या झूठ बोला मैंने। स्वामी जी ने कहा कि आपने कहा कि मैंने आपको दीक्षा दे रखी है, आपको मैंने कब नाम दिया, मैंने तो आपको कभी नाम दिया ही नहीं। परमात्मा बोले स्वामी जी याद करो, एक दिन आप स्नान करने के लिए पंचगंगा घाट पर जा रहे थे और मैं वहां पैड़ियों पर लेटा हुआ था, आपकी खड़ाओं मेरे सिर में लगी और मैं रोने लग्या, आपने कहा बेटा राम नाम जप, राम नाम नाम राम राम बोले, राम के नाम तो सुख होता है। स्वामी जी मैंने आपका नाम ले लिया, आप मेरे गुरु। अब रामानंद जी बोला भाई वो तो इतना बड़ा लड़का नहीं था, क्योंकि 2.5 वर्ष के बच्चे का और 5 वर्ष के बच्चे का डबल डिफरेंस हो जाता है शरीर में। स्वामी जी कहने लगे कि वो तो बहुत छोटा बालक था, इतनी उम्र का नहीं था। उसी समय परमात्मा ने 2 रूप बना लिए, एक रूप में 5 वर्ष की आयु में खड़े हैं और दूसरा एक सेवक की खाट चारपाई थी वहां उसके ऊपर 2.5 वर्ष के बच्चे का रूप धारण करके कहा स्वामी जी देखना ऐसा था मैं। अब रामानंद जी ने इधर देखा, एक बार तो उधर देखा, एक बार इधर देखा, 6 बार उधर देखा, 6 बार इधर देखा, आंख मसल मसल के देखा कि 2 कैसे हो गए। इतने में वो 2.5 वर्ष का बच्चा उस चारपाई से उठा और कबीर साहब में समा गया, 5 वर्ष के में समा गया। अब रामानंद जी के तो पाया तले की धरती निकल गई, फिर भी ये मन शंका थी। कहने लगा बच्चा मैं राम नाम तो नहीं देता, राम नाम नहीं देता, मैं तो कोई और मंत्र देता हूं। परमात्मा बोले आप ओम नाम देते हो, और उस ये गुप्त रखा जाता है। कोई भी मंत्र ऋषि देते थे तो वो अपने शिष्यों को कहा तो करते थे कि ये नाम किसी को नहीं बताना, और फिर जो लाए के लड़के तक तो वो जाना है, मत को सवाल ही पैदा नहीं होता। रामानंद जी जानेंगे भाई यू बात कच्ची को ना, ये तो महापुरुष है, ये तो परमात्मा ही है। एक एक परीक्षा और क्यों, मन की शंका बहुत जबरदस्त। कहने लगे बच्चा मैं जिसको नाम देता हूं उसको एक माला देता हूं कंठी, वो है तेरे पास? कहा स्वामी जी ये देखो यार, अरे तेरा गजब हो, ये कहां से लाया तू? आपने तो दी थी उस दिन गंगा घाट पे। अरे तेरा गजब हो, रामानंद जी की वह माला खो गई थी, उसने सोची पड़ेगी होगी गीता भाई तू क्या जाके आऊंगा। ने बोला देख यार आपने दी थी। अब रामानंद जी ने बोले भाई ये तो कुछ और बला है। तब कहते हैं अग्रम मगरम छोड़ दे अरमान हमारी सीख। परमात्मा बोले छोड़ दे इसे, तेरे कारण भटक रहा हूं मैं तुम्हारे लिए। अब रामानंद जी से परमात्मा चर्चा करते हैं। रामानंद जी कहते हैं मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा, भगवान विष्णु की महिमा, भगवान विष्णु की भक्ति करता हूं, भगवान विष्णु को इष्ट रूप में पूजता हूं, और स्वर्ग में जाऊंगा वहां ठाठ कराया करूंगा। वहां पर ना देव शरीर मिलेगा, इतना सुंदर शरीर होगा, वहां पर सारी मौज मौज है, वहां नाचने गाने ठाठ बाट, भगवान देखा, भगवान विष्णु को के दर्शन कराया करूंगा, स्वर्ग में जाऊंगा बच्चा। परमात्मा बोले आप गीता पढ़ते हो और विष्णु जी उन तीन गुणों में से एक हैं जो गीता जी के सातवें अध्याय के 12 से लेकर 15 तक में वर्णित है कि तीनों गुणों की भक्ति रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की भक्ति जो करते हैं। गीता ज्ञान दाता ब्रह्म कह रहा है कि जिनका ज्ञान इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा हरा जा चुका है, जो केवल इन्हीं की भक्ति पर अड़े हुए हैं, इनसे मिलने वाले ज्ञान पर आधारित हो चुके हैं, वो दृढ़ हो गए और किसी को नहीं मानते। वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख ये मुझे भी नहीं भजते। अब देखिए स्वामी रामानंद जी की सारी फड़क निकाल रहे हैं परमात्मा। ये देखो श्रीमद् भगवत गीता और इसमें सातवें अध्याय के 12वां श्लोक अध्याय नंबर 7 का और 12वां श्लोक, और भी जो रजगुण से उत्पन्न और भी जो रजगुण सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, और जो रजगुण से उत्पन्न तथा सतगुण से उत्पन्न तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु वास्तव में मैं उनमें और वे मुझ में नहीं हैं। ये काल भगवान क्या कहता है कि जो भी रजगुण ब्रह्मा से सतगुण विष्णु से तमगुण शिव जी से जो सतीथी सृष्टि जीवों की उत्पत्ति सतीथि और संहार आपस में मोह ममता ये जो हो रहा है ये मेरे से ही समझो, क्योंकि काल ने ही अपने तीनों पुत्रों की ड्यूटी ला रखी है ये जीवों को यहां जन्म और मृत्यु के चक्कर में डाले रखने के लिए और मोह ममता में डाले रखने के लिए। ये कहता वास्तव में मैं इनमें नहीं और ये मुझ में नहीं है, मैं इनसे न्यारा हूं। ऐसे ही अभी आपने शिव पुराण में पढ़ा था कि तीन रजगुण विष्णु ब्रह्मा और रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण है और वो सदाशिव जो काल है वो गुणातीत कहा जाता है, वो इनमें नहीं है। और यही यहां कह रहा है कि मैं इनमें नहीं और ये मुझ में नहीं, और काम सारे मैं ही करवा रहा हूं जो इनसे हो रहा है। आगे कहते हैं देखिएगा 13वां श्लोक, गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस और तामस इन तीनों प्रकार के भावों से सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है, इसलिए इन तीनों गुणों से परे यु काल बोल रहा है, गीता ज्ञान दाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके मुझे अविनाशी को नहीं जानता है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही पूजा में लग रहे हैं, ये मुझे इनसे ऊपर इनसे नारा जो मैं हूं ये मुझे नहीं जानते, क्योंकि क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुण में मेरी माया रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी का जाल, त्रिगुण में मेरी माया बड़ी दुस्तर है, क्योंकि यह अलौकिक अति अद्भुत त्रिगुण में मेरी माया बड़ी दुस्तर है। जो पुरुष मुझको ही निरंतर भजते हैं वो इस माया यानी रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु के जाल से निकल जाते हैं, उल्लंघन कर जाते हैं और पंद्रहवें में कमाल कर दिया। हाय हाय, कहते हैं इस माया के द्वारा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की के जाल में जो फंसे पड़े हैं, जैसे अब रामानंद जी बताओगे वहां मैं क्या करूंगा, विष्णु जी के दर्शन क्या करूंगा, वहां ऐसे ऐसे मौज है, ऐसा है वैसा है, तो क्या बताते हैं माया के द्वारा इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा के में ही उलझ-पुलझ रहने वाले जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीचे दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग मुझे भी नहीं बजते। आगे देखियो सातवें अध्याय का इसी से लिंक है, 20 से लेकर 23। ये देखिए सातवां अध्याय और 20 मंत्र में श्लोक में क्या कहा है, उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ब्रह्मा विष्णु महेश से जो लाभ मिलता है उन्हीं पर आश्रित हैं, और अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं। अन्य देवता ब्रह्मा विष्णु महेश भी अन्य देवताओं मानते हैं, अन्य देवताओं को भजते हैं, भजते हैं साथ पूजते हैं। अब 21, जो जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है उस भक्त की श्रद्धा में उसी देवता के प्रति सिर करता हूं, और कहते वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता के द्वारा मेरे ही द्वारा विधान किए हुए कुछ इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है, परंतु अब देखना यहां कमाल है, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का, उन मूर्खों का, मंद बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, मेरे भक्त मुझे प्राप्त होते हैं। अब परमात्मा कहते हैं स्वामी जी आप विष्णु जी की भक्ति करते हो और विष्णु जी को आप कहते हैं स्वर्ग में जाऊंगा और ब्रह्म लोक तक भी नाशवान है, ब्रह्म लोक स्वर्ग लोक तो बहुत नीचे का स्थान है और ब्रह्म लोक जो ज्योति निरंजन का स्थान ब्रह्म लोक है वो भी एक दिन नष्ट होता है। गीता जी के अध्याय नंबर 8 का मंत्र 16, ओए होए मंत्र 16, हे अर्जुन ब्रह्म लोक पर्यंत यानी ब्रह्म लोक तक सब लोग पुनर्वर्ती में है, नाशवान है, जन्म मृत्यु माते हैं, ब्रह्म लोक तक गए हुए लोग व्यक्ति भी साधक भी, हे कुंती पुत्र मुझको प्राप्त हुए का पुनर्जन्म नहीं होता। अब स्वामी जी कहते हैं और परमात्मा उसको क्या शिक्षा देते हैं, ए स्वामी तुम स्वर्ग की छोड़ो आसारीत, गरीब दास तुम कारणे हम उतरे शब्द अतीत, मैं ही वो पूर्ण परमात्मा तेरे कारण यहां पर आया हूं, ये स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा छोड़ दे। कहते हैं सुन बच्चा मैं स्वर्ग की कैसे छोड़ो रीत, गरीब दास गुदरी लगी ये जन्म गया मेरा बीते। कहते हैं रामानंद जी को परमात्मा ने सारी सृष्टि रचना सुनाई, बहुत ज्ञान समझाया, अब रामानंद जी कहां अड़के खड़ा हो गया, न्यो बोला ये बच्चा 104 साल का बूढ़ा हो गया वृद्ध, और अभी तक पूरे जीवन में 16 वर्ष की आयु से मैं इस मार्ग पर भक्ति पर लगा था, और आज आपने ये ऐसा ज्ञान बताया, यो झूठा भी नहीं कह सकता मैं इसको, क्योंकि परमाणु आधारित है, पर बच्चा कहीं मेरे साथ ऐसा ना बने मैं घर का रहूं ना घाट का, कहीं ऐसा ना हो कि जो साधना मैंने की है ये मेरी खराब हो जाए और आप आड़ी साधना पे मैं लगूं इतने मेरी मृत्यु हो जाए। तो परमात्मा कहते नहीं स्वामी जी, आपकी मृत्यु जब होगी जब ये दास कहेगा, इतना आपकी मृत्यु नहीं होगी। और स्वामी जी जो साधना आप कर रहे हो ये तो आपने असंखों बार कर ली, कोट जन्म तन भरमत हो गए कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सोकर खरबया बोरे कौआ हंस बुगारे, कोटि जन्म तू राजा के न्या मिटी न मन की आशा, भिक्षक होकर दर दर घूम लिया मिला न निर्गुण रासा, इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वृंद्रम राया, विष्णुनाथ के पुरकों जाकर फिर भी उल्टा आया। कहने लगे हे भगवान हे गुरुदेव ये साधना तो आपने संखों बार कर ली, इससे कि मैं लाभ तक हो ना, ये अरहट का कुआ लोई आगल बंजा है सब कोई, कीड़ी कुंजरे और अवतारा हर हट डोर बंधे कई बारा। अब रामानंद जी के छाती में लगे थी ये बातें, क्योंकि विद्वान था, चाह थी भगवान की, समर्पण था मालिक के नाम पर, परंतु ये जो लोक वेद सुना सुनाया ज्ञान, ये दंत कथा और ब्रह्मा विष्णु महेश को अमर अजर ये सुन रखे थे, यो अग टांग अड़ाए जावे है इस जीव को सतमार्ग पर जल्दी से लगन नहीं देता। तो क्या बताते हैं रामानंद जी, कहता है सुन बच्चा मैं स्वर्ग की कैसे छोड़ू रीत, गरीब दास गुजरी गई गुदरी लगी मेरा जन्म गया बीते, सुन चार मुक्ति बैकुंठ में, ओह कितना चाचड़ रहा रामानंद जी के नुक है, चार मुक्ति बैकुंठ में, और जिनकी मोरे चाह गरीब दास घर अगम की कैसे पाऊं था। आप जो इनसे भी ऊपर कोई स्थान बता रहे हो अगम घर, तो उसकी मैं कैसे सुनो, हमने तो आज तक यही सुना है कि स्वर्ग तो ऊपर कोई लोक नहीं है। हेम रूप जहां क्या बताते हैं, उस स्वर्ग की महिमा बताते हैं रामानंद जी, हेम रूप जहां धरती है रत्न जड़े वो सोबे, गरीब दास उस बैकुंठ को तन मन मेरा लोबे। वह भगवान विष्णु के लोक का कहते हैं सफेद जमीन है और बहुत ही सुंदर वहां पर व्यवस्था है, शंख चक्र गदा पद्म है मोहन मदन मुरारे, गरीब दास मुरली बजे वो स्वर्ग लोक दरबारे। भगवान के हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है, विष्णु जी के दर्शन कराया करूंगा। और कहते हैं दूधों की नदियां बगे श्वेत वृक्ष सुबाने, गरीब दास मंडल मुक्ति वो स्वर्गापुर स्थान। भगवान विष्णु के लोक में जो बतावा है दूध की नदी बहती है और वहां जाऊंगा मैं ठाठ कराया करूंगा। परमात्मा बोले कितने दिन रहोगे वहां पे, चल जाओ तो गे, आपकी मलाई जो आपने जो पुण्य किया है सारा जीवन खो दिया, वहां आपको उस रेस्टोरेंट में स्थान मिल जाएगा, आपकी पुण्य कमाई समाप्त होने के बाद आपको फिर 84 लाख योनियों आना पड़ेगा, जैसा भी आप गीता जी के 7वें अध्याय के और 23वें श्लोक में पढ़ रहे थे कि उन अल्प बुद्धि वालों का वो फल नाशवान होता है, उन देवताओं के उस लोक उसको अक्षीण करके वह फिर 84 लाख योनियां में आ जाते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 23 को फिर देखना। अब क्या बताता है ये काल भगवान, देखिएगा पवित्र गीता जी, अध्याय नंबर 9 का और श्लोक नंबर ये 23 में क्या कहा है। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त हैं दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। अब जैसे क्या कहता काल भगवान के वो जो दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं वो कहे हम भगवान को प्राप्त करांगे उस निराकार को, लेकिन उनका वो पूजना पूजन देवता अन्य देवताओं की पूजा तो करनी ही नहीं, वो शास्त्र विरुद्ध है। और गीता जी के अध्याय नंबर 16 के 23 में श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं, ये देखिएगा 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में, अध्याय नंबर 23 अध्याय नंबर 16 तो यहां 23 नंबर श्लोक में क्या कहा है, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी इच्छा अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है न परम गति को और न सुख को ही। अब क्या बता रहे हैं इस परमात्मा कि जैसे ये काल भगवान बोल रहा है कि जो अन्य देवताओं की ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं वो पूजना तो चाह रहे मुझको ही, लेकिन उनको पूरा ज्ञान नहीं है, वो उनकी साधना अविधि पूर्वक है, शास्त्र विरुद्ध है, और जिस कारण से उनको कोई लाभ नहीं होगा। आगे क्या बताते हैं अब 24वें श्लोक में देखिएगा, ये 24वां श्लोक है, इसका यहां अनुवाद किया है, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोगता और स्वामी मैं ही हूं, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसलिए गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं 25वें नंबर में, और पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, मुझको पूजने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। अब देखिएगा 9वें अध्याय का, ये 9वें अध्याय का और 21वां श्लोक कमाल कर दिया, बीसवां श्लोक देखिएगा 20वां, इसमें कहा कि तीनों वेदों में विधान किए हुए साकाम कर्मों को करने वाले सोमरस पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, वे पुरुष अपने पुण्यों का फल रूप स्वर्ग लोक में भोग कर स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं का भोग भोगते हैं। आगे देखो 21वें में, वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग का के साधन रूप तीनों वेदों में कहे वे सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले भोगों की कामना करने वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, पुण्यों के प्रभाव से स्वर्ग जाते हैं, पुण्य क्षीण होने पर फिर मृत लोक में आ जाते हैं। अब परमात्मा क्या कहते हैं, गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना जो थोथा बुछड़े किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी ही समझे न सार रहे अज्ञानी। अब रामानंद जी गीता के मर्मज वेदों के मर्मज को आवे पुराणों के मर्मज को आवे डूंडा पाट रहा, और कह कह का बेरा कोई ना, गीता बोल क्या रही, और कहता मैं तो बच्चा स्वर्ग में जाऊंगा, और गीता में लिखा कि स्वर्ग में क्या करोगे, अपने कर्म भोग कर फिर वापस आओगे पुनः के क्षीण होने के बाद फिर 84 लाख योनियों में धक्के खाओगे। और यही परमात्मा अपनी सिंपल लैंग्वेज में वही गीता जी का ज्ञान बता रहे हैं, कोट जन्म तरह भ्रमत हो गए कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर शुकर खरबा बोरे कौआ हंस बजा बुगारे, भजन करो उस रबदा जो दाता है कुल शब्दा। अब रामानंद जी अपनी डफली बजा रहे हैं जैसा ज्ञान था, फिर भी मंड रहे हैं बताने खातर बताने के लिए, ऐसा करूंगा वो ऐसा होता है। क्या बताता है, दूधों की नदियां बगे सेत वृक्ष शोभाने, गरीब दास मंडल मुक्ति उस सुर्गापुर स्थान, रत्न जड़ाओ मनुष्य है गण गंधर्व सब देव, गरीब दास उसे दाम की कैसे छोड़ूं सेव। कहते हैं स्वर्ग में जैसे यहां देखा ना किसी बच्चे का यहाँ तेल हो जाता है, सुंदर लगता है गोरे से शरीर पे, तो वहां मनुष्य स्वर्ग में कहता है कि वहां रत्न जड़े होते हैं, जगह जगह इतने सुंदर लगते हैं देवता लोग वहां पे, और मुझे भी वही शरीर मिलेगा वहां पे। तो परमात्मा कहे हैं वो मिलेगा कितने दिन ये भी तो सोच लो। रत्न जड़ाओ मंदिर मनुष्य है गण गंधर्व सब देव, गरीब दास उस धाम की कैसे छोड़ू सेव, यानी उस स्वर्ग के पूजा को कैसे छोड़ दूं। ओहो कितना कमाल कर रहे हैं, कहते हैं उस स्वर्ग की आशा को पूजा को कैसे छोड़ दूं। रगियजु श्याम अथर्वन गावे चारों वेद, गरीब दास घर अगम की कैसे जानो भेद, चार मुक्ति चितवन लगी कैसे बंचू ताही, गरीब दास गुप्तार गति ही हमको दो समझाही। रामानंद जी क्या कहता है, क्या कह रहे हैं स्वामी जी, स्वर्ग लोक बैकुंठ है या से परे ना ओरे, गरीब दास सठ शास्त्र और चार वेद की दौड़े। अब रामानंद जी नु कहे चार वेदों में छह शास्त्रों में यही लिखा है कि स्वर्ग ही अंतिम स्थान है, उससे ऊपर कोई स्थान को ना। अब देखो वो विद्वान पुरुष को आवे थे, वेदों के मर्मज ज्ञाता बतावे थे, और उसमें सतस लिखा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 20 में कि वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर देव आता है और वो ऊपर के तीसरे धाम में रहता है और फिर वही चौथे लोक में रहता है, वो स्वर्ग से अलग है वो लोक। और फिर भी कह रहा है कि चार वेद और छह शास्त्र में तो नहीं लिख रखा है, स्वर्ग ही स्वर्ग में ही ठीक है, इससे आगे कोई लोक नहीं है, जबकि वेदों में तो बहुत निर्णायक ज्ञान है। तो ये सारे कपोट पेला करते, झूठ बोला करते, इनको ज्ञान था नहीं, केवल संस्कृत आवे थी, तत्व ज्ञान नहीं था। तो क्या बताते हैं, स्वर्ग लोक बैकुंठ है या से परे ना ओरे, गरीब दास सठ शास्त्र और चार वेद की दूड़ी, चार वेद गावे तिसे है सुर नर मुनि मिलाप, गरीब दास द्रुपौर तिज जिस मिट गए तीनू ताप, नारद ब्रह्मा जिसे रटे और गावे शेष गणेश, गरीब दास बैकुंठ से और परे को देश। इस ते नारा और कौन सा लोक है, कहाँ है वो दूसरा देश है, कहाँ है वो लोक है, हमने तो कदे सुना नहीं। सैस 88 जिसे जपे और 33 से वे दास, गरीब दास जासे परे और कौन है देव। कहते हैं विष्णु भगवान को 88,000 देवता ऋषि जपे, 33 करोड़ देवता जप रहे, इस तागोर कौन भगवान है, हमने तो कदे ना सुना। अरे तेरा गजब हो, ये सारे जगह जगह आवाज लगा रखी वेदों ने, गीता जी ने, गीता जी के अध्याय नंबर 18 के मंत्र 62 में कहा है कि हे अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और सतलोक को प्राप्त होगा। बताओ और कैसे कहा करते हैं, परंतु वो तो विद्वान अवश्य कहलाते थे पर भक्ति मार्ग का और शास्त्रों का कह खै भी ज्ञान नहीं था इन महापुरुषों को। अब क्या बताते हैं, सुन स्वामी निज मूल गति, परमात्मा बोले कै समझाऊं तो हे, गरीब दास तेरे भगवान ने यो राख्या जगत समोहे। इस काल भगवान ने ये तू जिसको विष्णु कहे ना, ये महाविष्णु तो काल है, और यो जो विष्णु पुराण में दो व्याख्याएं हैं, एक तो विष्णु जो शिव विष्णु काल का बेटा है और एक महाविष्णु स्वयं काल है। कहते इस काल भगवान ने सभी संसार को सम्मोहित कर रखा है, उस ऊपर के भगवान की तरफ किसी की बुद्धि को जाने नहीं देता। सुन स्वामी निज मूल गति कै समझाऊं तो हे, गरीबदास भगवान को ये राख्या जगत समोहे। जिसको तुम भगवान मान रहे ना, इसने सबको सम्मोहित कर रखा है। तीन लोक के जीव से वे विषय वास घर में आए, गरीबदास हमको जपे तिसको धाम दिखावे। के तीन लोक के जीव विषय वासना में फंसा रखे हैं, और जो हमारा जाप करेगा, हमारी भक्ति करेगा, उसको सतलोक ले जाएंगे, उसको धाम दिखाएंगे। जो देखेगा धाम को सो मानत है मुझ, गरीबदास तो से कहूं सुन गायत्री गूज। ये किस कृष्ण विष्णु भगवान को जड़ा ही है जीव, गरीबदास त्रिलोक में काल कर्म और शिव। क्या बताते हैं कि तेरे इस विष्णु और कृष्ण भगवान ने ये जीव फंसा रखे काल के जाल में। अब पुण्यात्माओं ये बात नहीं जचेगी, जो पहली बार सत्संग आया होगा को भगत उसने बड़ो बढ़ा के लाया होगा, जो कहेंगे झूठ बोला आपके महाराज जीते हैं। ये गीता जी में दिखाता हूं आपको, गीता जी के अध्याय नंबर 14 के और मंत्र नंबर 3, 4, 5 में स्पष्ट होता है। ये देखिएगा पवित्र गीता जी, और इसके प्रश्न ये अध्याय नंबर 14 इसमें 3 नंबर में क्या कहता है गीता ज्ञान बोलने वाला ये काल भगवान। हे अर्जुन, मेरी ये महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति या दुर्गा सब प्राणियों की योनि है, अर्थात गर्भाधान स्थान है, और मैं उसकी उस योनि में चेतन समुदाय गर्भ को स्थापना करता हूं, और उसके उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की यानी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अब 4 में क्या कहा है कि अर्जुन, इनाना प्रकार के सब योनियों में जितने भी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी हैं, प्राणी उत्पन्न होते हैं प्रकृति या दुर्गा, उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है, मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूं। अब क्या बताते हैं आगे देखो, 5 में कहा है कि अर्जुन, सतगुण रजगुण तमगुण, सतगुण विष्णु रजगुण ब्रह्मा, सतगुण तमगुण विष्णु ना, सतगुण विष्णु रजगुण ब्रह्मा तमगुण शिव, ये प्रकृति से उत्पन्न दुर्गा से उत्पन्न तीनों भगवान तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को यहां फंसाए रखते हैं, शरीर में बांधते हैं। और वही परमात्मा गरीबदास जी अपने भगवान के ज्ञान के आधार पर बोल रहे हैं, कृष्ण विष्णु भगवान को जड़ाए हैं जीव, गरीबदास त्रिलोक में ये काल कर्म सिर सीवे। अब क्या बताते हैं कि स्वामी जी, आपने गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र 16 में पढ़ा कि ब्रह्म लोक पर्यंत ये सभी पुनर्वर्ती में है, सभी नाशवान है। तो क्या बताते हैं कि जब प्रलय होगी, महाप्रलय होगी, तब क्या होगा, पौमी धरणी आकाश थम्ब चलसी चंद्र सूरे, गरीबदास रज बीरज की फिर कहां रहेगी धूड़े। ये गीता देवी शिव देवी पुराण श्रीमद देवी पुराण 3 स्कंद में ये तीनों भगवान कहते हम नाशवान हैं। तो यहां परमात्मा ये समझाना चाहते हैं कि जब ना तेरा ब्रह्मा रहेगा, ना विष्णु रहेगा, ना शिव रहेगा, तब तुम कहां रहोगे। ये देखिए श्री मद भगवत गीता, ना श्री मद भगवत देवी पुराण, श्री देवी मद भगवत श्री देवी पुराण ये देखो, ये कहां से प्रकाशित है, श्री देवी भागवत संपादक हनुमान प्रसाद पोदार और चिमन लाल गोस्वामी। और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, मुद्रक व प्रकाशक है, और इसके तीसरे सगंध में 123 पृष्ठ पे दो लाइन पढ़कर सुनाऊंगा आपको। बस ये देखो 123 पृष्ठ पे ये क्या कहा है, भगवान विष्णु कह रहे हैं अपनी माता दुर्गा की महिमा सुनाते हुए, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है, यह संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्वान है, हमारा आविर्भाव जन्म त्रोभाव मृत्यु होता है हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। अब स्वामी जी का तो कर्जा पाट गया, ने बोला ये भगवान अब क्या करूं मैं, अब कहां जाऊं, कहां मरूं। तब परमात्मा ने कहा, रामानंद जी बोले कि मैं त्रिवेणी में पहुंच जाता हूं, साधना करता हूं, योग अभ्यास से मैं अपने शरीर को अंदर समाधिस्थ होता हूं। परमात्मा बोले, लगाओ समाधि। रामानंद जी का अभ्यास था, तुरंत ही आगे पहुंच गए, ऊपर तीन रास्ते आते हैं। तब परमात्मा ने बताया कि स्वामी जी ये जो रास्ता है आपका, ये आपकी साधना वाला है, और इसमें पहले धर्मराज का लोक आएगा, उसके बाद विष्णु शिव और ब्रह्मा के लोक आएंगे, कोमन स्वर्ग के लोक आएंगे, और आप पहले धर्मराज के पास जाओगे, वहां आपके संस्कार वश आपको आगे भेज दिया जाएगा, और ये इधर 88,000 खेड़े हैं, इधर जा रहा है, और ये सामने ब्रह्म नगर है, ये तुम्हारे इस मंत्र से ओम से नहीं खुल सकता। तब परमात्मा ने अपनी शक्ति से उसको खोला और सतलोक को दिखाया, वहां परमात्मा बैठे दूसरे रूप में, वहां परमात्मा का अपने दूसरे रूप में विराजमान थे, और 5 वर्ष का बालक स्वामी रामानंद जी की आत्मा को लेकर ऊपर गए। वहां भगवान आसन पर विराजमान है, कबीर परमात्मा सतपुरुष, और नीचे डबल रोल कर रहे हैं, तो नीचे से दो 5 वर्ष के बालक के रूप में ऊपर गए, तो वहां चौर करने लगे अपने ही उस तेजोमय शरीर के ऊपर। रामानंद जी ने सोचा कि वो पूर्ण परमात्मा ये है, जौन सा तख्त पर बैठा है, सिंहासन पर बैठा है, कबीर यहां का कोई अनुचर नौकर होगा, देव होगा। उसी समय वो पूर्ण परमात्मा जो तक सिंहासन पर बैठे थे वो खड़े हुए, और कबीर परमेश्वर वहां पर विराजमान हुए, 5 वर्ष के बालक, और वो पूर्ण परमात्मा छोटे से बालक पर चौर कर रहे हैं, वो आसन पर बैठे जज के कबीर साहब 5 वर्ष के बालक में, सत परमात्मा वाले सिंहासन पर विराजमान हुए, और कुछ देर में देखते देखते वो पूर्ण परमात्मा कबीर जी में समा गए, 5 वर्ष के बालक में ही वो अकेले ही बैठे रह गए सिंहासन पर। इतने में रामानंद जी की आत्मा को वापस भेज दिया। जब उसकी समाधि टूटी तो सामने वो 5 वर्ष का बालक सामने बैठा, उसी समय रामानंद जी ने चरण पकड़ दिए, बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीब दास सब रूप में तुम ही बोलन हारे। अब बोलत रामानंद जी सुन कबीर करतार, गरीब दास सब रूप में तू ही बोलन हारे। कहते हैं तावा चित चक्रित भया देख फजल दरबारे, गरीब दास सजदा किया हम पाए दीदार। तुम स्वामी में बाल बुद्धि ब्रह्म कर्म कियो नास, गरीब दास पूर्ण ब्रह्म तुम मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। ओए होए सुन बे सुन से तुम परे उर से हमरे तीर, दास गरीब सर्वंग में तू अवगत सत्य कबीरी, कोट कोट सजदा किए और कोटि कोटि प्रणाम, गरीब दास अनहद अदर हम पर से तव दाम। मैंने आपका लोग देख लिया भगवान, आप पूर्ण परमात्मा हो। दो थोड़ है एक तू भया एक से दो, गरीब दास हम कारणे तुम आए हो मगजो। ओए होए, कहते दोनों छोड़ भगवान तू ही है, ऊपर सतलोक में भी तू ही है या मेरे सामने भी तू ही है, और हमारे लिए तुझ जीवों के लिए आप यहां इतना लंबा सफर तय करके आए हो।